ओम हे ईश्वर हरे श्री भगवान विद्यात हमें प्रदान करें मम मेरा सर्वरक्षाम सभी ओर से सुरक्षा न्यस्त रखा हुआ अंग्री पद्मा जिनके चरण कमल पतकेंद्र पृष्ठे समस्त पक्षियों के राजा गरुड़ की पीठ पर दर शंख अरि चक्र चर्म ढाल असी तलवार गदा गदा ईशु तीर चाप धनुष पाषाण पाश फंदा धदान ग्रहण किए हुए अष्ट आठ गुना सिद्धियों से युक्त अष्ट आठ बाहु भुजाएं धन्यवाद पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की पीछे दोहराइए परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे आठ भुजाओं वाले श्री भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे आठ योग शक्तियों अनिमा लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहम गुरु उपासना कहलाती है। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के समान धर्म है, उसे इस श्लोक में बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन हैं, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए भगवान से कृपा याचना करें। छोटा सा परपट है। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसान है और अपने चरण कमल से उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष तथा पाश धारण किए हैं। ऐसे आठ भुजाओं वाले श्री भगवान सभी समय मेरी रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे आठ योग शक्तियों अनिमा लघिमा इत्यादि से समन्वित हैं। चैप्टर इंद्र द्वारा गुरु बृहस्पति का अपमान, इसके बाद आरंभ हो रहा है नारायण कवच। तो हम दो मिनट के लिए प्रभुपाद जी ने इसकी जो समरी दी है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आज चर्चा करेंगे। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वर्ग के राजा इंद्र ने किस प्रकार असुरों के सैनिकों पर विजय प्राप्त करी। इसे विष्णु मंत्र कवच का भी वर्णन हुआ है। इस कवच के द्वारा रक्षा प्राप्त करने के लिए पहले कुश छूना चाहिए, प्रोसेस बताया सारा। फिर आचमन मंत्रों के द्वारा मुक्त होना चाहिए। मौन धारण करते हुए आठ अक्षरों वाले विष्णु मंत्र को शरीर के अंगों में और बारह अक्षरों वाले मंत्र को हाथों में धारण करना चाहिए। आठ अक्षर वाला मंत्र है ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को शरीर के अगले तथा पिछले भागों में न्यस्त करना चाहिए और बारह अक्षरी मंत्र प्रणव ओंकार से आरंभ होता है। इस प्रकार ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर उंगली में एक एक अक्षर धारण करें और फिर प्रणव ओंकार धारण करें। फिर इस मंत्र के अक्षरों को क्रम से हृदय सर दोनों भौहों के बीच शिखा तथा आंखों के बीच धारण करें। फिर मह अस्त्राहे फट का जप करे, इस मंत्र से चारों ओर से अपनी रक्षा करे। ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है उसे इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। शास्त्र के आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वे गुण में अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने। इस निवेदन के पश्चात गरुड़ देव पर आसीन अष्टभुजी भगवान विष्णु की प्रार्थना करे, साथ ही मत्स्य वामन कूर्म नरसिंह वराह परशुराम रामचंद्र नर नारायण दत्तात्रेय कपिल सनत कुमार हयग्रीव नारद देव धन्वंतरी ऋषभ देव यज्ञ बलराम व्यासदेव बुद्धदेव तथा केशव का ध्यान करे, वृंदावन के स्वामी गोविंद तथा चिदाकाश के स्वामी नारायण मधुसूदन श्रीधामा माधव ऋषिकेश पद्मनाभ जनार्दन दामोदर विश्वेश्वर के साथ साथ स्वयं श्री भगवान कृष्ण का भी ध्यान करे। भगवान के साक्षात अंश स्वांश और शक्तिवेश अवतारों की स्तुति करने के बाद भगवान नारायण के आयुधों यथा सुदर्शन गदा शंख खड़क और तीर की भी स्तुति करें। इस विधि को बतलाने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने महाराजा परीक्षित को बताया कि वृत्रासुर के भाई विश्वरूप ने किस प्रकार नारायण कवच की महिमा का वर्णन इंद्र से किया। बहुत सारे लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि हमें बलराम कवच दे दीजिए, हमें नारायण कवच बता दीजिए वगैरह वगैरह, ऐसी चीज चर्चाएं चलती रहती हैं। इस सारे के अंदर जो है प्रभुपाद ने जो लिखा है एक लाइन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है उसे इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। सो दिस इज नॉट फॉर ऑल, ये हरेक के लिए नहीं है कि हरेक इसको कर पाए, अपराध हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। शास्त्र के आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि गुण में अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जो है लोग कहें अरे मैं तो अपने आप को सुरक्षित मानना शुरू कर दूंगा, मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, नारायण कवच का जप करना ही है ना, श्लोक ही तो पढ़ने हैं। पर श्लोक पढ़ने के बाद साथ साथ जो क्रिया करनी है, मन किस लेवल तक जाना चाहिए, वो सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक हमें वो नहीं आएंगी, वो आने का मतलब है कि जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के समान धर्म में नहीं मानेंगे तब तक ये बात नहीं करनी चाहिए। दिस इज नॉट अलाउड, ये हमारे लिए परमिटेड नहीं। और समान धर्मा, जो बात समान धर्मा की हो रही है कि हम परमेश्वर के समान धर्म मतलब एक जैसे गुणों के समान अपने आप को ले आए, इसका क्या अर्थ है कि भगवान जो है परम ब्रह्म है और जीव जो है वो ब्रह्म के पद तक उठकर पहुंच सकता है, तो ब्रह्म के पद तक पहुंचने के लिए उसके अंदर ये आठ चीजें आनी चाहिए। जब तक आठ चीजें नहीं होंगी तब तक वो भगवान के समान धर्म का नहीं बन सकता। टेक्निकली हम कह देते हैं भगवान सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद हैं, भगवान सच्चित आनंद है हम भी सच्चित और आनंद है, इसलिए हम जो हैं भगवान के समान धर्मा है। बट नहीं, भगवान के समान धर्मा होने के लिए आदमी को धर्माधर्म से शून्य अर्थात पाप रहित होना पड़ेगा, वो लेवल आना पड़ेगा जब आप पाप रहित हो जाएं, देयर इज नो सिन, मृत्यु रहित होना पड़ेगा, जरा रहित होना पड़ेगा, भोजन इच्छा रहित होना पड़ेगा, पिपासा शून्य प्यास खत्म, शोक रहित, सत्य काम सत्य संकल्प। जब तक ये आठ गुण आपके अंदर नहीं आए, जब तक आत्मा इन आठ गुणों को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक आप भगवान के समान धर्म में नहीं आ सकते। समान धर्मा होने के लिए हमको उस लेवल तक जाना है अर्थात देव पद प्राप्त करना है। देवताओं के लक्षण जो है बताए हुए हैं इस भगवद्गीता के 16वें अध्याय के पहले से लेकर तीसरे श्लोक में कि दैवी संपदा के क्या लक्षण है, उन गुणों को प्राप्त करना। यहां पर जो है चर्चा हो रही है कि भगवान विष्णु जो है अष्ट सिद्धि के स्वामी हैं, और जो योगी होते हैं जो ध्यान योग करते हैं वो हृदय में बैठे परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनपे अपने मन को लगाते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और वो भी जो है आठ सिद्धियों में से कुछ सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं जिसके द्वारा वो चमत्कार दिखाते हैं और अपनी वाहवाही लूटते हैं। भक्त नहीं बनते वो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हवा में किया तो सोना निकल आया, इधर ऐसे किया तो कुछ निकल आया, अर्थात वो लोग जो है इन सिद्धियों को प्राप्त करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करके अपने आप को जो है इस लेवल पे लेके आते हैं कि वो कुछ चमत्कार दिखा सके। परंतु वो आठ सिद्धियां क्या है, जिसके स्वामी है भगवान, भगवान ने उन सिद्धियों को प्राप्त नहीं किया है। प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है, तपस्या करी और प्राप्त किया। भगवान स्वामी है, भगवान सिद्धियों को देने वाले हैं, इज दी ओनर। तो सिद्धियां हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहां दो सिद्धियां जो हैं चर्चित करी हैं, एक है अनिमा। अनिमा मतलब अनु के समान छोटा हो जाना, वेरी स्मॉल। आप अणु के समान छोटा हो सकते हैं। लघिमा, लघु, लघु का मतलब होता है यहां पर हल्का हो जाना। लघु होते हैं ना, फिर हवा में उठ जाते हैं, हवा में उठ जाते हैं, और हल्के हैं ना तो हवा में उठ जाते हैं। महिमा का मतलब होता है बड़ा हो जाना, अर्थात पर्वत के समान बड़ा हो जाना। आप छोटे दिखाओ, ये जो आजकल के सिद्धि प्राप्त किए लोग हैं इनमें ये सिद्धियां नहीं है कि छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, पर्वत के समान बड़ा हो जाना, नहीं है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है जो इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना, डिजायर ए थिंग कैंड यू गेट इट। पांचवी सिद्धि है इषित्व। इषित्व का अर्थ है भूत और भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना। तो आज के सिद्धि योगी जो हैं, क्या किसी सृष्टि की रचना कर सकते हैं? तो उन्होंने देखो, मैंने ये दो जीव बना दिए, मैंने अपनी सिद्धि से जो है ये चार मनुष्यों की रचना कर दी, दो शेर बना दिए मैंने, चार बिल्लियां बना दी, आठ कुत्ते बना दिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ऐसी कुछ सिद्धि है उनके पास कि वो जो है भौतिक सृष्टि, देखो मैंने सिद्धि करी पर्वत बन गया, मैंने सिद्धि करी इसमें 12 पीपल के पेड़ बन गए, ये टक से एकदम खड़े कर देना। मतलब ये सिद्धियां जो है जिसमें कहें कि भूत भौतिक सृष्टि को उत्पन्न कर सकना, ये उनके बस की बात नहीं है। एक दो सिद्धियां मिल जाती हैं, ठीक है, दे गेट इट, बट आठ सिद्धियों को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। उसके बाद है वशित्व। वशित्व का अर्थ है कि सारी सृष्टि को अपने वश में कर लेना, जैसे हम कहते हैं हिप्नोटाइज, जैसे मैं कहूंगा वैसे करोगे, जैसे मेरे वश में हो कि मेरी आज्ञा के, मेरे आदेश के, मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकते। तो जो लोग इन सिद्धि प्राप्त योगियों से मिलते हैं वो करते तो अपनी मर्जी है, उनकी मर्जी पे तो नहीं चलते, उनके वश तो है नहीं। यह है कि सिद्धि के द्वारा कोई वस्तु उन्हें मिल गई है, बस उसका वो प्रयोग करते रहते हैं। तो यहां है भूत भौतिक सृष्टि को अपने वशीभूत कर लेना, अपने वश में कर लेना। अब इसके बाद प्रकाम्य। प्रकाम्य का अर्थ है कि आप धरती पर बैठे हैं और इस मिट्टी के ऊपर जो है ऐसे डुबकी लगा रहे हैं जैसे समुद्र में या जल में या नदी में लगा रहे हैं। सोचा है किसी योगी को करते हुए, आजकल जितने योगी प्रकट हुए हैं कोई योगी ऐसी सिद्धि कर पाया है, ऐसा दिखा पाया है कि वो जो है मिट्टी में भी जल की भांति डुबकी लगाने वाला, मतलब जितनी समस्त असंभव इच्छाएं हैं उनको भी पूरा कर लेना, उनकी पूर्ति कर लेना, असंभव इच्छाओं की भी पूर्ति कर लेना। आठवीं सिद्धि है कामावसायता, सत्य संकल्पत्व उत्पन्न कर लेना। सत्य संकल्प मतलब आपने जो संकल्प किया वो सत्य हो जाए। तो ये जो सिद्धियां हैं, ये सिद्धियां क्या पॉसिबल है? तो भगवान विष्णु जो है इन सिद्धियों के स्वामी हैं। अब यहां पर जो है जो नारायण कवच की चर्चा हो रही है, अब पीछे जो श्लोक छोड़ आए हैं, उनको जो है शॉर्ट में पढ़ते हैं। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, भगवान कृपा करके मुझे वे विष्णु मंत्र कवच बताएं जिससे राजा इंद्र की रक्षा हो सकी और वे अपने शत्रुओं को उनके वाहनों समेत सहित परास्त करके तीनों लोकों के ऐश्वर्य का उपभोग कर सका। कृपया मुझे वे नारायण कवच बताएं जिसके द्वारा इंद्र ने युद्ध में अपने उन शत्रुओं को हराकर सफलता प्राप्त की जो उसे मारने का प्रयत्न कर रहे थे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, देवताओं के राजा इंद्र ने देवताओं के द्वारा पुरोहित के रूप में नियुक्त विश्वरूप से नारायण कवच के संबंध में पूछा और विश्वरूप द्वारा दिए गए उत्तर को तुम ध्यानपूर्वक सुनो। विश्वरूप ने कहा, भय का अवसर उपस्थित होने पर मनुष्य को चाहिए कि पहले अपने हाथ पांव धोए, तब वह ये मंत्र ओम अपित्रो पवित्रो या सर्वस्थान गतोपिवाह या समृद पुंडरीकाक्ष स भय अभ्यंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु जब का आचमन करे, तब उसे चाहिए कि कुश को छूकर शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्णतया शुद्ध होने पर उसे चाहिए कि आठ शब्दों वाले मंत्र को अपने शरीर के आठ भागों में छुआए और बारह शब्दों वाले मंत्र को हाथों में छुआए, फिर नारायण कवच को स्वयं से इस प्रकार बांधे, पहले आठ शब्दों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करते हुए प्रथम शब्द ओम या प्रणव से प्रारंभ करके अपने हाथों से अपने शरीर के आठों अंगों का स्पर्श करे, पहले दोनों पांव छुए, फिर क्रमशः घुटने जांघ पेट हृदय छाती मुख तथा सिर को छुए, इसके बाद उल्टे क्रम से मंत्र का जप करे अर्थात अंतिम शब्द यह से प्रारंभ करे, फिर शरीर के अंगों को भी उल्टे क्रम से छुए। ये दोनों विधियां क्रमशः उत्पत्ति न्यास और संहार न्यास कहलाती है। तब उसे चाहिए कि द्वादश अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे, इस मंत्र के बारह अक्षरों को दाहिने हाथ की तर्जनी से आरंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक प्रत्येक उंगली के छोर पर प्रत्येक अक्षर का उच्चारण करते हुए रखे, शेष चार अक्षरों को अंगूठों के पोरों पर रखे। फिर उसे छह अक्षरों वाला मंत्र ओम विष्णवे नमः जपना चाहिए, उसे ओम को अपने हृदय पर, वी को शिरोभाग पर, श को भावों के मध्य, ण को चोटी पर तथा वे को नेत्रों के मध्य रखना चाहिए। तब मंत्र जप करता न अक्षर को अपने शरीर के समस्त जोड़ों पर रखे और मां अक्षर को अस्त्र के रूप में ध्यान दे, इस प्रकार साक्षात मंत्र हो जाएगा। तत्पश्चात उसे चाहिए कि अंतिम शब्द मां में विसर्ग लगाकर मह अस्त्राय फट इस मंत्र का जप पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में करे, इसी तरह सभी दिशाएं इस मंत्र से की सुरक्षा कवच से बंध जाएंगी। इस प्रकार जप कर लेने के पश्चात मनुष्य को चाहिए कि वे छह ऐश्वर्यों से युक्त तथा ध्यातव्य श्री भगवान के साथ अपने आप को गुण की दृष्टि से तदाकार समझे, तब उसे चाहिए कि वे निम्नलिखित नारायण कवच अर्थात भगवान नारायण की सुरक्षा स्तुति का जप करें। अब उसके बाद जो है आज का श्लोक आता है। एक सिंपल प्रश्न है कि इस जप को कौन कर रहा है, किसके लिए एडवाइस किया गया है और क्या उसका लक्ष्य है। राजा परीक्षित ने अपने गुरु से पूछा है उस वक्त सुखदेव गोस्वामी से कि मेरी शत्रुओं से रक्षा किस प्रकार होगी, अर्थात देवासुर संग्राम होगा तो असुरों से मेरी रक्षा किस प्रकार होगी। अब रिजल्ट क्या है कि जो भी व्यक्ति इस नारायण कवच का जप कर लेता है वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है, नंबर एक, और भगवान विष्णु उसकी सुरक्षा करते हैं। पर हो किस लिए रहा है, व्हाट वॉज द बेसिक पर्पज। इंद्र अपना सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। इंद्र क्या चाहता है, सिंहासन प्राप्त करना, अर्थात इंद्र अपना ऐश्वर्य वापस चाहता है। अब अगर हम जो है इसको करें तो क्या हम कोई ऐश्वर्य चाहते हैं, क्या हमारी कामना जो है अपने शत्रुओं को परास्त करने की है, क्या हम जो है हमारे कोई शत्रु हैं जिनको हम परास्त करना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि हमारे हमने कुछ शत्रु पैदा कर लिए हैं उन शत्रुओं से हमें रक्षा मिले? डू वी नीड इट? मतलब डर तब हो ना, देखो मेरे बहुत सारे मैंने बहुत दुश्मन पैदा कर लिए हैं अपने, ये सब दुश्मन जो है मेरे लिए खतरा बन गए हैं, तो मुझे इस खतरे से सुरक्षा चाहिए, इसलिए मैं नारायण कवच का उच्चारण करूं। नारायण कवच को अगर किसी ने प्राप्त करना है तो उसको जो है एक ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा सबसे पहले, जो इन सारे कार्यकलापों में एक्सपर्ट है, ओनली ही कैन टीच। ये पढ़ के दो लाइनें आप नारायण कवच नहीं कर सकते। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो हमारे लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है। हम जब कृष्ण के भाव में आते हैं, कृष्ण भावनामृत में आते हैं, भगवान के आदेशों का पालन करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो लक्ष्य है वो क्या होता है? ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। जब ईर्ष्या ही नहीं होगी, द्वेष ही नहीं होगा, तो दुश्मन कहां से होगा? होगा क्या? जब किसी से ईर्ष्या ही नहीं करते, जब हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो भक्त की क्वालिटी क्या है? वैष्णव की क्वालिटी क्या है? जो पीर पराई जानता है, अर्थात परा दुख दुखी, दूसरे के दुख में दुखी है। हम उससे ईर्ष्या नहीं कर रहे दूसरे, हम तो उसके दुख में दुखी हैं, हम उसकी सहायता करना चाहते हैं। तो उसकी सहायता करने के लिए क्या हमें कवच चाहिए? डू वी नीड इट? ज्ञान दिया गया है, नॉलेज इज वेरी गुड, वी शुड नो अबाउट दिस, परंतु टेक्निकली जो है हमको इसकी आवश्यकता नहीं। अब प्रश्न आता है यहां पर, यहां चर्चा कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहम गुरु उपासना कहलाती है, इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता। तो अहम गुरु उपासना क्या है? व्हाट इज अहम गुरु उपासना? स्पष्ट लिखा है कि वो अपने आप को ईश्वर से अलग नहीं कर पाता। ही थिंक्स कि वो भी जो है, जैसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अर्थात मैं भी भगवान बन सकता हूं। वो ये नहीं जानते कि ब्रह्म और परम ब्रह्म में अंतर है, दोनों में भेद है, दोनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस है कि भगवान गुणों में अनंत है और हम गुणों में सूक्ष्म है। वी हैव वेरी लिमिटेड, बहुत ही सूक्ष्म है हम गुणों के अंदर। समान गुण हो सकते हैं, सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, परंतु हमारे गुण जो है उनके मुकाबले में नाम मात्र है। अब भगवान जो है अनंत गुणों से विभूषित है। तो यहां जो है व्यक्ति सोचता है कि मैंने सिद्धियां प्राप्त करके मैं भगवान बन गया हूं, तो लोग अपने आप को भगवान के नाम से अपना नाम जोड़ के पुकारना शुरू कर देते हैं। भगवान सो एंड सो, भगवान सो एंड सो, भगवान सो एंड सो, भगवान सो एंड सो। वो कहते हैं कि गुणों की दृष्टि से मैं परमेश्वर के समान हूं, क्योंकि मैं भी ब्रह्म हूं। हालांकि उनमें ब्रह्म के कोई गुण नहीं होते, मृत्यु रहित, पिपासा रहित, भोजन इच्छा रहित। तो ये जो गुण दृष्टि सोचते हैं कि मेरे पास कुछ सिद्धियां आ गई हैं, तो मैंने जो है भगवान का स्थान प्राप्त कर लिया है। आज की डेट में फिलॉसफी क्या चल रही है कि ऑल लेडीज कैन बिकम लक्ष्मी, सब स्त्रियां लक्ष्मी बन सकती हैं और सब पुरुष नारायण बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है? दिस इज अहम गुरु उपासना। अहम मतलब स्वयं, अपने आप को वो उपासित होने के लेवल पे सोचते हैं कि मेरी भी उपासना की जा सकती है, मेरी भी पूजा अर्चना की जा सकती है, क्योंकि मैं भगवान के समान, मेरे और भगवान में अब कोई अंतर नहीं रहा। हमने एक प्रत्यक्ष प्रमाण देखा, एक गुरु के आप शिष्य हो, आपने शिष्यता ग्रहण करी, गुरु के चरणों में समर्पित होने का प्रॉमिस किया, कमिटमेंट करी कि मैं गुरु के चरणों में समर्पित अपने आप को करता हूं। चार पांच छह साल के बाद खुद गुरु बन बैठे, और ऐसा कुछ मौका आया कि जो गुरु बन बैठे हैं उनके शिष्य भी खड़े हैं, और जिनके वो गुरु बने, जिनको गुरु धारण किए था, उनके भी शिष्य खड़े हैं, और वहां पे जो है वो गुरु के समक्ष, गुरु के साथ पैरेलल उनके खड़े हैं। और जब कोई चर्चा हुई तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं, देखो ऐसा है कि हमारा इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो काम ये कर रहे हैं वही काम मैं कर रहा हूं, इसलिए आप बिल्कुल किसी प्रकार की चिंता ना करें, हमारे दोनों का लक्ष्य एक ही है। व्हाट डज इट मीन? ये भी अहम गुरु उपासना कि अपनी उपासना यहीं पे हुआ है, इसी जगह पे हुआ है, मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं उसका, कि इनके लक्ष्य में और हमारे लक्ष्य में कोई भेद नहीं है, परंतु कुछ तरीका अलग हो गया है, हम दोनों का लक्ष्य एक समान है। और ये बात जो है अपने शिष्यों से कही जा रही है, अपने गुरु के सामने खड़ा होके, सामने नहीं उनके उनके बगल में खड़ा हो, तो ये भी अहम गुरु उपासना का उदाहरण है कि वो अपने आज जैसे कि वहां यहां पे ईश्वर से तादात्म्य होने की बात कर रहे हैं और गुरु के समान धर्म की बात कर रहे हैं। टेक्निकली इट साउंड्स सेम, कोई अंतर नहीं है दोनों बातों में। और क्या कहते हैं, ये मानकर कि जिस प्रकार नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के समान धर्म है, दोनों का धर्म एक समान है, क्योंकि आत्मा ब्रह्म है और भगवान भी ब्रह्म है। ये भूल जाते हैं कि ब्रह्म में और परम ब्रह्म में भेद होता। उसे श्लोक की बताई विधि से परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए और उनकी शरण में जाना चाहिए। जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन है। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जीव जो है भगवान के अधीन है। एक बड़ा कॉमन श्लोक है जिससे पूछो भगवद गीता का संदेश क्या है, तो क्या कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। भगवान क्या कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतु भूमात संग अस्तु अकर्मणी, कि तेरा कर्म करने का अधिकार है, अधिकार की बात हो रही है, तेरा फल पर अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार होगा तो तू फल देने वाला बन जाएगा, तू जो मर्जी आए, कर्म किया मुझे फल चाहिए, तेरे को फल मिल जाएगा, फल देना मेरे हाथ में है। तो अधीन कौन हुआ, जीव अधीन हुआ जी। तो यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि जीवात्माएं सदैव परमेश्वर के अधीन है, फलतः उनका कर्तव्य है कि सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के लिए श्री भगवान से कृपा याचना करें। कि आपको अब हमें सुरक्षा किस चीज से चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, आई नीड सुरक्षा, बट व्हाट काइंड ऑफ सुरक्षा, दुश्मनों से, मेरे को वैरी है, मैं लोगों से ईर्ष्या करता हूं, मैंने दुश्मन पाल रखे हैं, मुझे उनसे सुरक्षा चाहिए, इसलिए मुझे जो है नारायण कवच का अध्ययन करना चाहिए। मुझे सुरक्षा चाहिए, जरूर चाहिए, पर किससे चाहिए, भौतिक सुख भोग और ऐश्वर्य से, सेंस ग्रेटिफिकेशन से, इंद्र तृप्ति से, सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से, कि मैं इनके प्रति आकर्षित न हो, मुझे उसकी सुरक्षा चाहिए। आई नीड दैट, कि संसारिक भोग जो है मेरे पे अटैक न कर पाए, मैं भगवान की भक्ति में लगा रहूं, मुझे इस चीज की सुरक्षा चाहिए। दिस इज व्हाट आई रिक्वायर। ये बात जो है जिसने समझ ली, वो तो भगवान की सुरक्षा के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसका गुजारा इस मंत्र से बहुत बढ़िया हो जाता है। उसे और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, दिस नो नीड। वेरी सिंपल टू रिसाइट, इसका जप करना बड़ा आसान है, शब्द बड़े आसान है, आनंद पूरा है, इफेक्ट पूरा है, और मुझे किसी और कवच की आवश्यकता नहीं है। अब यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है ओम। ओम शब्द जो है इसका क्या अर्थ है? हम लोग जो है हर जगह पे हर मंत्र के पहले ओम का उच्चारण करते हैं, स्पीक ओम बिफोर दैट, हर के पहले ओम कहते हैं। ओम अज्ञान तिमरन से ज्ञान अंजन शलक, कोई भी शुभ मंत्र बोलेंगे तो उसके पहले ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओम को जो है प्रणव अक्षर कहा जाता है। प्रणव अक्षर का अर्थ क्या होता है? रूट, किस धातु से बना है, रूट क्या है इसका, रूट। तो जो हमारे जितने भी मंत्र हैं उनका जो रूट है, जो उनकी जड़ है, वो ओम से स्टार्ट होती है। जब आप जो है पढ़ते हैं मांडव्य उपनिषद, गोपालपुर, उत्तरतापनीय उपनिषद, इन उपनिषदों में जब चर्चा करते हैं तो आपको ओम शब्द का जो है डिटेल मीनिंग मिलता है। तो यहां पर जो है उपनिषद के अनुसार जो है, अथर्ववेद में जो आता है गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद, उसमें जो है ओम का अर्थ क्या दिया हुआ है कि ओम के अंदर जो है तीन अक्षर हैं, आ उ मा, और ऊपर जो है एक तुरई है, उसके ऊपर एक बिंदु है जिसे अर्धचंद्र कहते हैं, आधा चांद कहा जाता है, अर्धचंद्र कहते हैं। उसमें जो नीचे की जो मात्रा है उसको तुरीय कहते हैं, और ऊपर जो बिंदु है वो दोनों मिलके जो है अर्धचंद्र बनते हैं। तो जब आ शब्द का आप उच्चारण करते हो तो अब बलराम जी का स्मरण कर रहे हैं, यू आर रिमेम्बरिंग बलराम जी। और जब आप जो है रामावतार में जाते हैं तो ही बलराम जी जो है लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट होते हैं, आप उनका स्मरण करते हो। बलराम जी जो है वो अकारात्मक नाद है और शेष नाग के रूप में विश्व का आश्रय है। क्योंकि विश्व का आश्रय है इसलिए इसको वैष्णावर भी कहा जाता है, अर्थात बाहर की सब बातें जानने में सतत सावधान है। ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, सदैव जागरूक रहते हैं। कभी भी बलराम जी, लक्ष्मण जी कभी सोते थे क्या वनवास के अंदर? सुना कभी आपने कि मनुष्य राम वनवास के अंदर जो है लक्ष्मण जी सो गए हो? सदैव जागरूक, इसको बहिप्रज्ञ कहते हैं। किसी भी समय किसी भी क्षण क्या होने वाला है उनको इनका पूर्ण ज्ञान रहता है। ये जागृत अवस्था के अभिमानी कहलाते हैं। जो ऊ शब्द है उकारात्मक है, यह प्रद्युमन जी, यही प्रद्युमन जी जो है रामावतार के अंदर शत्रुघ्न के रूप में प्रकट होते हैं। चूंकि ये तेजस रूप है, काम के अंश हैं, इसलिए आपके मन में स्थित रहते हैं। प्रद्युमन जी हमेशा आपके मन में स्थित रहते हैं, सूक्ष्म जगत के स्वामी हैं, स्वप्न अवस्था के भी माने, स्वप्न जो आपको आते हैं, स्वप्न के अंदर जो बातें होती हैं, उन सबके जो है इंचार्ज जो है वो प्रद्युमन जी। इसका मतलब है कि सूक्ष्म, सूक्ष्म का मतलब है जिनका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, जो सूक्ष्म लोकों का भार उठाते हैं, मन की सूक्ष्म वासना द्वारा कल्पित जगत में रहते हैं, मन में स्थित रहते हैं, आपके अंतर की सारी बातें जानते हैं, अर्थात अंतप्रज्ञ, अंतर्यामी। इसी वजह से भगवान अंतर्यामी जो है वो प्रद्युमन की वजह से। उसके बाद आता है मां, मकारात्मक है अनिरुद्ध जी, प्राज्ञ बुद्धिमान भरत जी। अगर आप भरत जी का इतिहास पढ़ेंगे तो भरत जी से बुद्धिमान कोई हुआ? उन्होंने एक प्रथा चलाई कि बड़े भाई का किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। खड़ाऊ ले गए कि राज सिंहासन पे, खड़ाऊ रख दूंगा मैं, राज्य नहीं करूंगा। बोलते चलो, आज तो कहते हैं दो दिन का राजा बना दो, 15 दिन का राजा बना दो, ये इलेक्शन में झगड़े हो रहे हैं, वो इलेक्शन में झगड़े हो रहे हैं, बोले सीएम मैं बनूंगा, बोले सीएम मैं बनूंगा, मुझे नहीं बनाया है तो उसको क्यों बना दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां पर 14 साल के लिए राज्य मिल रहा है, माता ने हमेशा के लिए राज्य दिलवा दिया है, तब भी लेने को तैयार नहीं। कहते जैसे सोया हुआ मनुष्य जो है किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, जब डीप स्लीप होती है, डीप स्लीप में स्वप्न नहीं आता, इंद्रियां और मन दोनों सो जाते हैं, परंतु न स्थूल भोगों की न सूक्ष्म भोगों की ओर दृष्टि करता, कब? सोया हुआ। तो भोगों की दृष्टि, अब क्या भोगना है क्या करना है, उसकी दृष्टि नहीं रहती, चाहे सूक्ष्म हो और चाहे स्थूल हो। तो अनिरुद्ध जी जो है आनंदमय है, आनंद के भोगता है। भरत जी ने राज्य की ओर देखा भी नहीं, मैं पहले बता चुका हूं आपको, इसीलिए इनको जो है प्राज्ञ रूप कहा जाता है। डीप स्लीप जब होती, सुषुप्ति अर्थात भौतिक संसार से आपका संबंध टूट जाए, उसके स्वामी हैं भरत जी। संसार मिल रहा था ना, अयोध्या जी पूरी मिल रही थी, पूरा राज्य मिल रहा था, करने के लिए क्या किया, छोड़ दिया। अर्थात भरत जी जो है उसको आप रिमेंबर करते हो। और बाकी जो है इसके बाद जो अर्थचंद्र है उसमें जो गोल गोल तुरीय है वो है वासुदेव, अर्थात जिनसे संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, नाद रूप है वो, प्रणव का संपूर्ण स्वरूप जो है वो तुरीय है, बिगनिंग वहां से होती है। संपूर्ण जगत के कारण, सबके अंतर्यामी, संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का स्थान, वासुदेवम सर्वम इति सब महात्मा सुदुर्लभा। भगवान ने वहां जो है कृष्ण एवं नहीं कहा, क्या कहा है? वासुदेव। भगवद गीता पढ़िए, स्पष्ट लिखा है भगवान ने वहां कृष्ण नहीं कहा, वासुदेवम, कृष्ण एवं नहीं कहा। तो ये जो है इसके अंदर जो बिंदु है, बिंदु क्या है, व्हाट इज दैट बिंदु? बिंदु इज स्वयं भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी, शी इज देयर। और वही बिंदु जो है राम अवतार के अंदर सीता जी। तो जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो हम भगवान के चारों रूपों का उच्चारण कर रहे हैं, चतुर्व्यूह है। हम भगवान के जो है बलराम जी, प्रद्युमन, अनिरुद्ध और वासुदेव, चारों रूपों के साथ राधा जी का उच्चारण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इसलिए ओम जो है उसको रूट कहा गया है, बिगनिंग कही गई है, आरंभ कहा गया है। इसलिए जब हम किसी भी मंत्र के पहले ओम लगाते हैं तो हम भगवान के चारों रूपों सहित राधा जी का स्मरण कर लेते हैं, उनके नाम का उच्चारण कर लेते हैं। इसी से जो है मंत्र की महत्ता बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और मंत्र जो है संपूर्ण नहीं होता अगर हम उसके पहले ओम शब्द नहीं लगाते। इसलिए जो है यहां पर जो है जब देखेंगे, जब आज की तारीख में 12वें श्लोक के अंदर आरंभ हो रहा है, सबसे पहले यही कहा गया है, ओम हरि विद्यात्मम सर्वरक्षाम निस्तंग्रि पद्म पदकेन्द्र पृष्ठे दरारी चर्म असी गदाई शुचाप पाषाण ददान अष्ट गुण अष्ट बाहु। शुरुआत कहां से हुई है? ओम से। तो किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें जो है, हम कहेंगे हरे कृष्णा में तो ओम है नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हो, ये तो मंत्र है। मंत्र में और महामंत्र में फर्क होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू। तो हरे कृष्ण क्या है तो उसमें ओम की आवश्यकता नहीं, कि उसके हर शब्द में ओम ऑटोमेटिकली मिला हुआ है, उसमें जो है आपको अलग से ओम शब्द कहने की, उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। अच्छा प्रश्न आया, सुनो जरा। एक प्रश्न आया है इंटरनेट पे, व्हाई द डायमंड्स आर डिवोटीज ऑफ लॉर्ड शिवा एंड दुर्गा एंड व्हाई दे ब्लेस सच डायमंड्स नोइंग देयर इंटेंशंस। भगवद गीता के अंदर सातवां अध्याय पढ़ेंगे जब, तो सातवें अध्याय के अंदर जो है चर्चा आती है हिंदी का। प्रश्न ये है कि जो असुर हैं वो शिवजी की और दुर्गा जी की पूजा करते हैं, और शिवजी और दुर्गा जी जो है उनको क्यों वरदान दे देते हैं जब ये जानते हैं कि वो वरदान जो है गलत इस्तेमाल किया जाएगा। देवताओं के बारे में एक गुण है, वो गुण क्या है कि अगर आप किसी देवता की विधि पूर्वक उपासना करते हैं जो विधि शास्त्रों में बताई गई है, जो वेदों में विधि बताई गई है, जो वेदों के अंदर जो है कर्मकांड का अध्याय है, पोर्शन है, उनमें बताया गया है कि किस देवता की विधि पूर्वक उपासना करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो देवताओं की उपासना करने के बाद देवता कंपेल्ड हैं आपको आपकी इच्छा अनुसार वर देने के लिए। वो आपसे पूछते हैं आपको क्या चाहिए, वर मांगिए, वो ऑटोमेटिकली नहीं दे देते। अगर ऑटोमेटिकली दे भी दिया है तब भी उनको जो है जिसने उपासना करी है उसके अनुसार वर को बदलना पड़ता है या उसमें कुछ एडिशनल चेंजेस लाने पड़ते हैं। जिसका एक उदाहरण है राजा द्रुपद। राजा द्रुपद ने शिवजी की उपासना करी, उनसे चाहा एक पुत्र। विधि पूर्वक उपासना करने के बाद शिवजी जो है राजा द्रुपद के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुम्हें पुत्री की प्राप्ति होगी। तो राजा द्रुपद अड़ गए, बोले मैंने पुत्री की प्राप्ति के लिए उपासना नहीं करी है, मैंने आपकी विधि पूर्वक पूजा करी है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे एक पुत्र की कामना है। अब शिवजी फंस गए, वर तो वापस हो नहीं सकता भाई, ये तो दे दिया, ये तो अब चला गया मेरे हाथ से, ये तो अब जो है पर एक एडजस्टमेंट है कि समय पाकर यही पुत्री पुत्र बन जाएगी, समय पाकर यही पुत्री पुत्र बन जाएगी। तो राजा द्रुपद को पुत्री हुई, नाम रखा गया शिखंडनी, और वही जो है समय पाकर जो है शिखंडी के रूप में परिवर्तित हुई, जिसके लिए उसको स्थूनाकरण नामक जो यक्ष था उसकी सहायता प्राप्त हुई, और कारण बने उसके स्वयं के पिता, जिन्होंने उसका विवाह एक हिरण्यवर्मा नामक राजा की कन्या से कर दिया, क्योंकि उन्होंने इस पुत्री को पुत्र की तरह पाला था। तो शास्त्र के अंदर उल्लेख मिलता है कि शिवजी हो, दुर्गा हो, या और भी कोई देवी देवता हो, अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव उनकी अगर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करता है जो विधि शास्त्रों में बताई गई है, सो वो कंपेल्ड हैं उनको ये वर देने के लिए, उससे टल नहीं सकते, बिकॉज यही उनकी ड्यूटी है, यही भगवान ने उनको जो है सेवा दी हुई है। क्योंकि जब तक वो सेवा नहीं स्वीकार करेंगे, जब तक ऐसे वर नहीं देंगे, तब तक भगवान की लीलाओं के बारे में हमें नहीं पता लगेगा। अगर रावण को वर नहीं प्राप्त होता तो भगवान राम की सारी लीलाएं वनवास की और उसके बाद वहां जाने की और पहले धनुष तोड़ने की सब लीलाओं में कहीं ना कहीं रावण अटैच था। तो रावण को मारने के लिए अर्थात दुष्टों का विनाश करने के लिए भक्तों को लीला का आनंद देने के लिए भगवान जो है अपने जो भक्त देवी देवता हैं उनके द्वारा इस तरह के वर दिलवाते हैं जिससे कि उनको अपनी लीलाओं को प्रदर्शन करने का चांस मिले सो दैट डिवोटीज कैन एंजॉय। इसलिए कंपेल्ड हैं देवी देवता ऐसा वरदान देने के लिए क्योंकि शास्त्रों में लिखित है बिल्कुल स्पष्ट कि देवी देवता वरदान देंगे उसके बाद कुछ श्रृंखलता होगी फिर भगवान का प्राकट्य होगा फिर भगवान लीलाएं करेंगे दुष्टों का संहार करेंगे साधुओं का परित्थान करेंगे। हरे कृष्ण। कौन किसका है? ध्रुपद का पुत्र है, पहला पुत्र उसी का वही है। बाद में जो है द्रोणाचार्य का वध करने के लिए द्रुपद ने जो है फिर यज्ञ किया जिसमें याज और उपयाज दो ऋषियों को बुलाया गया। इन दोनों ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया। उस यज्ञ के अंदर जो है दो लोगों की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ धृष्टद्युम्न और उसके बाद एक सांवले रंग की अति सुंदर कन्या का प्राकट्य हुआ जिसका नाम था याज्ञसेनी, जिसका दूसरा नाम था कृष्णा और तीसरा नाम था द्रौपदी। ये जो हम लिख देते हैं ना हरे कृष्णा आगे आ की मात्रा लगा देते हैं सब जगह देखना आजकल ऐसे ही चलता है। इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ है। हम लोग भगवान का नाम न लिख के बार बार द्रौपदी का नाम लिखते हैं। ये कृष्णा उसका नाम था। हरे कृष्णा।